जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. J जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस सभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिविरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहम् श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजन सहितम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का संदेश देते हैं। शरणागति और भक्ति यही भगवद गीता का सार है। इसके अलावा भगवद गीता का उद्देश्य नहीं है। हालांकि लोगों के मन में गलत धारणाएं रहती हैं कि भगवद गीता का अर्थ ये है, भगवद गीता का अर्थ वो है। मनमाने ढंग से कोई न कोई निष्कर्ष पर निकालते हैं भगवद गीता का, परंतु श्री कृष्ण के वाणी में ही उनकी भक्ति और शरणागति ये एकमात्र उद्देश्य है सारे गीता का। किस तरह की भक्ति? ऐसी भक्ति नहीं जिसमें हम सभी की कर रहे हों, सभी की उपासना कर रहे हों, ऐसा नहीं।
भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है माम एकम शरणम व्रज, कि केवल मेरे शरण में आना है अर्जुन। और इसलिए उन्होंने भक्ति के सर्वोच्च स्थिति का उल्लेख भी किया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है वो सबसे बड़ा है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। वो कहते हैं कि ऐसे लोग महात्मा होते हैं जो मेरे आध्यात्मिक शक्ति का, जो मेरे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और ऐसे आश्रित होकर ये लोग मेरी भक्ति करते हैं अनन्य भाव से। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भक्ति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं भगवान। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, ये भली भांति जानते हुए कि श्री कृष्ण ही सबसे ऊंचे सत्य हैं, वो परम सत्य हैं, और ये जानकर भले अपने पूरी तरह से हृदय से भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना अनन्य भाव से। इसे अनन्या भक्ति कहते हैं या उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो अनन्या भक्ति का वर्णन यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गीता में किया है। तो अनन्या भक्ति को उत्तमा भक्ति भी कहते हैं। जिस उत्तमा भक्ति का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि उत्तम भक्ति कौन सी है? वो भक्ति जिसमें हमारे मन में भगवान की भक्ति करते समय कोई अन्य अभिलाषा न हो सिवाय भगवान की सेवा के, न हमारी भक्ति कोई कर्म भावना से, सकाम भावना से मिश्रित होनी चाहिए, न हमारी भक्ति निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने की इच्छा से मिश्रित होनी चाहिए। केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए, और इस इच्छा के अनुसार जब हम भगवान की सेवा करते हैं अनन्य भाव से, अन्य आश्रयों को त्याग कर एक प्रामाणिक सद्गुरु के निर्देशन के अनुसार, तो उस समय उस भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं। इस उत्तमा भक्ति को केवला भक्ति भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम् धुन्वन्ति काचनेन निहारम् इव भास्करः। तो भागवत में कहा गया है कि सबसे ऊंची भक्ति जो है केचित् केवलया भक्त्या, तो केवला भक्ति क्या है? कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना और किसी की अन्य की उपासना नहीं करना, इसे केवला भक्ति कहते हैं। वासुदेव परायणाः, ऐसे भगवान के चरण कमलों में आश्रित होकर जब भगवान की सेवा करते हैं केवल उनकी और किसी की नहीं, तो उसे केवला भक्ति कहते हैं। अघम धुनवंती कार्स्नेन निहारम एव भास्कर, और ये भक्ति इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है कि शुद्ध भक्ति के प्राकट्य होने के पहले ही जितने भी पाप हमारे हृदय में हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के पहले ही जब सूर्य के किरणें थोड़े बहुत प्रकट हो जाती हैं तो जितना भी कोहरा है वो नष्ट हो जाता है, और फिर सूर्योदय के पहले से ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की एक केवला भक्ति है। तो इस प्रकार से जिस भक्ति का वर्णन जो हम सबके लिए वांछनीय है, जो प्राप्त करने योग्य है, वो है ये अनन्या भक्ति या उत्तमा भक्ति या केवला भक्ति। तो ये हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है, इसको प्राप्त करना हमारे जीवन की सफलता है। इससे नीचे दूसरा कोई उद्देश्य हमारे मन में हमें नहीं बना के रखना चाहिए। जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रहे और उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हम प्रामाणिक गुरु परंपरा के आदेश अनुसार हम कार्य कर रहे हों, तो हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि सफलता हमारे लिए निश्चित है। केवल थोड़े समय की बात है, परंतु सफलता आएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर सभी लोग भगवान के शरण में क्यों नहीं जाते? यदि केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हम निरंतर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, बल्कि भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं भगवान के धाम में, तो फिर ऐसे कई लोग क्यों हैं संसार में जो कि भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं? हम सबको अनुभव है कि कितनी बार हम लोगों से कहते हैं आप भी मंदिर में आइए, तो नहीं आते हैं, कोई न कोई बहाना बनाते हैं। तो क्यों है ऐसा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ये जो भक्ति का पथ है ये बहुत सरल है, परंतु मेरी माया शक्ति बहुत प्रबल है, सभी लोग मेरे माया शक्ति के अधीन हैं, और माया के चंगुल में फंस के वो मुझ भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए मेरी भक्ति नहीं करते हैं। तो यदि माया शक्ति के चंगुल से हमें निकलना है, माया के सागर को पार करना है, जो कि साधारण अवस्था में बहुत ही मुश्किल है, प्राय असंभव है, तो इसके लिए उपाय केवल यही है कि हम श्री कृष्ण के भक्ति के आश्रय को हम स्वीकार करें। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मायाम एताम तरंतिते प्रपद्यन्ते। तो जो प्रपद्यन्ते, जो पूरी तरह से आश्रित होता है भगवान श्री कृष्ण के, वही मात्र आसानी से भगवान के माया शक्ति को पार कर सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो फिर ये लोग क्यों नहीं लेते भगवान के? किस प्रकार के लोग हैं जो भगवान के आश्रय को ग्रहण नहीं करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण आगे ही बताते हैं। तो आज इस श्लोक की संक्षेप में चर्चा हम करेंगे। भगवद गीता के सातवां अध्याय है, भगवत ज्ञान, 15वां श्लोक है ये। तो ये हम सबको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप जिनको बात प्रचार करेंगे ना बाद में चल के, फिर आप सोच सकते हैं कि जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आ रहे हैं वो किस श्रेणी में पड़ रहे हैं। फिर उनको जाके बोलिए मत, फिर और भी दूर हो जाएंगे वो। तो आइए हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरम् भावम् आश्रिताः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। आश्रिताः निष्कृतिनो मूढाः जन्ते नराधमाः सुरं भावमाश्रिताः। माताजी कोई बोलेंगे? दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आशुरं भावमाश्रिताः।
जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरी, क्षमा कीजिए, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्री कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं। पहले श्रेणी है मूढ़, जिसको यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं जो निपट मूर्ख हैं, नराधम जो मनुष्यों में अधम है, सबसे नीच। माया पहरत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और आसुरम भावम आश्रिताः, जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय ग्रहण किया है। तो ये चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पथ को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि इनमें से कोई भाग्यशाली हो, उनको किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, तो हो सकता है कि वो भी भक्ति के पथ में आए। संभव है, शुद्ध भक्त के संग से कुछ भी संभव है, परंतु साधारण तौर से देखा जाता है कि ऐसे लोग नहीं आते हैं भगवान के शरण में। तो ये पहले प्रकार के व्यक्ति कौन है? मूढ़ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो बिल्कुल मूर्ख है। किस प्रकार के मूर्ख हैं? उन्होंने तुलना की है एक गधे की जो बहुत परिश्रम करता है। आप तो जानते हैं कि जो गधा होता है वो अपने बुद्धि के लिए प्रसिद्ध नहीं होता है, है ना? यदि आपको सबसे बुद्धिमान पशु ढूंढना है, बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढना है, तो आप गधों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि गधा प्रसिद्ध है तो किस लिए? अपनी अल्प बुद्धि के लिए, अपनी ज्यादा तेज बुद्धि के लिए नहीं है। तो गधे की पहचान ये होती है कि वो दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और अंत में उसे मिलता है थोड़ा घास। तो ऐसे ही दिन रात मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो आवश्यकता नहीं होने पर भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे मेहनत करने से बहुत लाभ प्राप्त होगा, हम जीवन को सफल बना पाएंगे। ऐसे मूढ़ लोग होते हैं, अपने आप ही बिना वजह के अपने जिम्मेदारियों को बढ़ाते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि समय नहीं है, इतनी जिम्मेदारियां हैं। परंतु इतनी जिम्मेदारी बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ही बढ़ा लेते हैं हमारी जिम्मेदारियों को, और फिर हमारे जिम्मेदारियों को दोष देते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारी है, हम मंदिर में नहीं आ सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नैवोद विजय परदुरत्यय वैतरण्यस त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। वो कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे
मैं इस माया के सागर से डरता नहीं हूँ, हालांकि ये माया मायामय जगत जो है ये बहुत भयंकर है, इसमें तरह तरह के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो मूल दुख हैं, साथ साथ और कितने सारे दुख हैं, परंतु इस भव सागर में तैरते हुए भी मैं निडर हूँ। न एव उद्विजे, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता हूँ इस भौतिक सृष्टि से हे प्रभु। पर दुरत्य वैतरण्यास, क्योंकि ये जो भव सागर है, वैतरणी नदी है, इसे पार करना तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी मैं निडर हूँ, मैं विचलित नहीं हूँ। क्यों? नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यस त्वद् वीर गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि आपके कथाओं का, आपके लीलाओं का जो वर्णन है वो अमृत के समान है, और उस अमृत का पान मैं करते रहता हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होती है, ना मुझे कोई बेचैनी होती है मन में, ना कोई भय होता है, ना चिंता होती है, ना दुख होता है, क्योंकि सारे समय में केवल आपकी कथा, आपके नाम, इन चीजों में रुचि रख के अपना जीवन बिता रहा हूँ, तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। है तो केवल एक दुख है, वो क्या है? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय, शोचे ततः, शोच कर मैं शोक करता हूँ, दुख करता हूँ उन लोगों के लिए, विमुख चेतस जिनकी जिनका चित्त जो है आपसे विमुख हो चुका है, जो आपको पीठ दिखा रहे हैं, जो आपकी भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैं शोक करता हूँ। और ऐसा ये लोग आपको पीठ क्यों दिखा रहे हैं? इंद्रियार्थ, केवल अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो क्या चाहते हैं? माया सुखाय, ये संसार का जो माया सुख है, इस माया सुख से वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। देखिए कितने मूर्ख हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मेरे हृदय में बहुत करुणा जागृत हो गई है, हे प्रभु, तो इनके लिए मैं शोक करता हूँ, और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ इनका उद्धार करने के लिए। और ऐसे माया सुख की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं? भारम उद्वहतो विमूढ़ान, भार मतलब वजन जो है, बोझ या जिम्मेदारी जो है, उद्वहतो बिना वजह उठा लेते हैं, अपने जीवन में बिना वजह के जिम्मेदारियां बढ़ा बढ़ा कर ऐसे अपने ही जीवन में परिस्थिति खड़ा कर देते हैं कि वो भक्ति नहीं कर सकते। एक व्यक्ति हमें मिले थे एक बार ट्रेन में, उस सिगरेट पीना तो आपको पता है ट्रेन के अंदर मना है, आजकल कहीं कई जगह बाहर भी पीना मना होता है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ बीड़ी कुछ सूख रहा था, तो मैंने उसे कहा भाई बीड़ी नहीं पीना। बोला क्या करे, अब नहीं छूटा जाता, अभी हम इसके बिना नहीं रह सकते, कितना कष्ट हो रहा है। वो खुद अपनी दुख भरी कहानी बताने लगे, तो हमने कहा किसने कहा तुम्हें शुरू करने के लिए? सबसे ये तो खुद खांस रहे हो, खुद इतना दुख है, दांत भी गिर गए, मुंह के अंदर भी कितने सारे बीमारियां हो गई, तरह तरह की बीमारियां हो गई, अपने आप सर के ऊपर ये सारा कष्ट ले लिया, क्या आवश्यकता थी अब इसके पीछे खर्चा करो वो बीड़ी सिगरेट खरीदने के लिए, फिर जब बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के लिए फिर खर्चा करो, दवाइयों के लिए खर्चा करो। तो बिना वजह के अपने जीवन में हम ये तकलीफें ला बैठते, उसी प्रकार से जिम्मेदारियां भी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। क्यों? माया सुखाय, इस माया सुख से हम सोचते हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी, तो जिम्मेदारी बढ़ाते रहो। तो प्रहलाद कहते हैं विमूढ़ान, कृष्ण भगवान तो यहाँ मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रहलाद महाराज एक कदम आगे जाते हैं, विमूढ़ान, अति मूढ़ हैं ये लोग कहते हैं। कभी कभी भक्त भी ऐसे कठोर वचन बोलते हैं, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं होता। संसार में देखा जाता है कि जब लोग कठोर वचन बोलते हैं तो ये वचन द्वेषपूर्ण होते हैं, द्वेष से भरे होते हैं। उनके मन में कोई ईर्ष्या या द्वेष की भावना होती है या घृणा की भावना होती है, जिसके कारण ये ऐसे कठोर वचन बोलते हैं। परंतु जब भगवान ऐसे बात करते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त यथा प्रहलाद जैसे बात करते हैं, तो इसके पीछे कोई द्वेष घृणा आदि नहीं है। इसके पीछे केवल करुणा है और प्रेम है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यदि आप मुझे यहाँ से मुक्त न भी करें इस भयंकर भवसागर से, फिर भी कोई समस्या नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ रहते हुए भी आपके सानिध्य में हूँ। मेरे लिए वैकुंठ क्या और भवसागर क्या, ये एक ही है। क्योंकि वहां भी जाऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा, यहाँ भी आपकी भक्ति कर रहा हूँ। केवल ये लोग जो है केवल अपने काम बढ़ाते जाते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा शोक करता हूँ। और उनको कहा जाए कि कृष्ण कथा सुनने के लिए आइए, तो उनको लगता है कि ये बहुत तीक्ष्ण है, ये श्रवण नहीं किया जाता, इसका पान नहीं किया जाता, इसे बहुत कष्टप्रद है। निवृत्त तर्षे रूपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोविरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर अमृतमय कथाओं का श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर ऐसे व्यक्ति कोई है तो वो अवश्य पशुघ्न होना चाहिए, जो केवल पशुओं की हत्या कर करके जिसका हृदय बहुत कठोर हो चुका है। या पशुघ्न का और एक अर्थ होता है जो इस भौतिक सृष्टि में रह के अपने आत्मा की ही हत्या करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपना हित क्या है नहीं जानता, जो अपना अहित कर बैठता है, ऐसे ही व्यक्ति आपकी कथाओं में रुचि नहीं रखेगा। क्योंकि जो व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि के भोग करने के लिए अभी तक बहुत भूखा प्यासा है, वो आपकी कथा सुन नहीं सकता, ज्यादा देर सहन नहीं कर पाएगा, वो उठ के चला जाएगा या आएगा ही नहीं। क्योंकि ये जो अमृतमय कहानी कथा है निवृत्त तर्षेर, उनके लिए है जिनकी तृष्णा खत्म हो चुकी है। और ये जो कथा है ये एक भव औषध है, ये बहुत सुंदर दवाई है हमारे मूल रोग के लिए, जिसको भव रोग कहते हैं, सबसे भयंकर बीमारी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे इस श्रेणी के जो लोग होते हैं कथा में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। निद्रया ह्रियते वक्तम विवायेन च वावयः, अपने रात को या तो वो सोने में व्यर्थ कराते हैं या तो फिर संभोग में बिता देते हैं। दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, और दिन में केवल अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए, अर्थार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बस इनका जीवन यही है, जो बिल्कुल पशु तुल्य है। तो ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं, जो बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे ही व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए अपने नम्रता से वो कह रहे हैं, मनुष्य जन्म पाइय राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। वो कहते हैं कि मैंने ये मनुष्य मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, परंतु इस मूल्यवान मनुष्य देह के सुअवसर को ठुकरा कर, त्याग कर, मैंने केवल जान बूझ कर ही इंद्रिय तृप्ति नाम का विष का पान किया है। अब मेरा सारा जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया है। विफल से विनु कृपण दुर्जना, और ऐसे कृपणों के दुर्जनों की मैं सेवा करता रहा और सोचा कि कुछ लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो ऐसे है ये मूड जो भगवान के शरण में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने संसार में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि आप एक सुअर को रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश आदि देंगे तो इतना पसंद नहीं करेगा वो। जहाँ कीचड़ पड़ा होगा सीधा कीचड़ के पास भागेगा रसगुल्ला आदि छोड़कर। एक बार एक व्यक्ति हमें मिले थे, ये भी ट्रेन में, जितने भी हमारे अनुभव होते हैं सब रेलगाड़ी में होते हैं, क्योंकि लोग ऐसे बैठे रहते हैं, मिल जाते हैं। एक सज्जन थे, अपने बच्चे के साथ थे, तो बोल रहे थे, हमने साथ में देखा, स्वामी जी इस बच्चे को थोड़ा समझाइए, बहुत मूर्ख है। अच्छा, क्या हुआ, क्या बात है? नहीं, वो कुछ समझता नहीं है, बहुत भोला है। भोला है तो अच्छा है, ठीक है। फिर वो थोड़ा उदाहरण देने लगे, ऐसे कई उदाहरण दिए। फिर देते देते उसने कहा, हम उस दिन एक किसी व्यक्ति की शादी में गए थे और यहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे पदार्थ पड़े हैं खाने के लिए, और ये जाके सीधा खिचड़ी खा रहा है। हमने कहा, अरे बेटा काजू किशमिश खाओ, ये वहां पड़ा है, काजू अच्छा कुछ खाओ, ये खिचड़ी क्या खा रहे हो? देखो ऐसा मूर्ख है ये लड़का। हमने कहा, इस तो अच्छी बात है, खिचड़ी भी कोई कम चीज है, कितनी सुंदर बात है, खिचड़ी खा रहा है। आपका आप भाग्यशाली है कि आपको ऐसा बच्चा मिला जो बहुत सरल जीवन से आ सकते है, केवल काजू किशमिश खाने में नहीं पड़ा है वो, और आप उसे भर्त्सना कर रहे हो, उसे डांट रहे हैं कि भाई काजू किशमिश खाओ, जीवन में कुछ भोग करो। आप उसे भोग के जीवन की ओर प्रेरित करते जा रहे हैं, उसका स्वभाव है सरल जीवन, तो सरल जीवन में रहना चाहिए उसे, आप भी प्रेरित करो। तो लोगों का विचार कैसे होता है, जो भोग है वो सबसे अच्छा, हमारे बच्चों को भी प्रेरित करो, सच अच्छा भोगी बनो, सबसे श्रेष्ठ भोगी बनना चाहिए। यहाँ बच्चे को खिचड़ी अच्छी लगी तो खिचड़ी खाने नहीं दिया, काजू किशमिश की ओर भेजा, वहां खाओ वो खाओ। परंतु जो वास्तविक जो अमृतमय जो भोजन है आत्मा के लिए, जो कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम है, उसकी ओर अपने बच्चों को नहीं भेजते, ना खुद आते हैं। जैसे शरीर के लिए भोजन चाहिए वैसे आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए, आत्मा का आहार आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भले दुनिया में कितने भी बीमारियां क्यों ना हो, किसी को पेट की बीमारी, किसी को क्या, परंतु सभी लोग प्राय इस दुनिया में आत्मा की बीमारी से ग्रस्त हैं। आत्मा से हर एक व्यक्ति कमजोर है, आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं करना चाहता। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो तुरंत हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, कोई न कोई हम कदम उठाते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई पहचानता भी नहीं है कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हूं। जब बीमारी बीमार है पता ही नहीं है तो फिर आगे समस्या का समाधान होगा कैसे? जैसे जो मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि वो स्वयं कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरी कोई मानसिक समस्या है। वो दूसरे सामने वाले को कहेंगे, आज समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। ये समस्या होती है, इसलिए इलाज भी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है मानसिक रोग के मरीज के साथ। तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आध्यात्मिक बीमारी की बात है। अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हैं और कुछ करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों के लिए भी, जब तक हम 16 माला जप ठीक से नहीं करेंगे, हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हैं। तो हमें हमारा जप, हमारी साधना आदि अच्छी तरह से करनी चाहिए और भक्तों के संग में आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि इस वर्ग के जो लोग हैं मूढ़, वो इतने आकर्षित, आकर्षण करने वाले जो कृष्ण कथा है उसमें आकर्षित नहीं होते, और यहाँ वहाँ के जो कथाएं हैं दुनिया की कथाओं में बहुत रुचि लेते हैं। जिन कथाओं को श्रीमद् भागवत में वायस तीर्थ बताया गया है, कौओं का तीर्थ स्थान, कौओं का तीर्थ स्थान कौन सा होता है? वो बहुत गंदी जगह होती है, कौवे वहां उसी स्थान में जाते हैं जहां बहुत गंदगी हो। तो उसी प्रकार से वायसम तीर्थम का अर्थ है कि वो स्थान जहां भौतिक कथाएं बोली जा रही हो, टीवी, रेडियो, अखबार इत्यादि, वहां पे क्या है, केवल भौतिक कथाएं चलती जा रही है। जहां भी आप जाएं केवल लोग भौतिक कथा ही कर रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कि कोई भगवान के बारे में कोई अच्छी बातें कह रहा हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है उन लोगों का है जो भगवान के आश्रय में नहीं आते हैं। तो ये है मूड है। और आगे चल के फिर प्रभुपाद जी कहते हैं नराधमाह, नर अधम। आपको पता है कि 84 लाख योनियां हैं इस भौतिक सृष्टि में। इन 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनि जो हैं वो मनुष्यों को छोड़कर हैं, केवल 4 लाख योनि मनुष्यों के हैं। चातुर्लक्षाणी मानुषः, 4 लाख योनि है, तरह तरह के चेतनाओं का स्तर है। और ऐसे 4 लाख योनियों में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य में और पशु में अंतर ये होता है कि मनुष्य धर्म का पालन करता है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा हो तो हमें समझना चाहिए कि वो पशुतुल्य है। तो ऐसे पशुतुल्य व्यक्ति को जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, जिसके जीवन में कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संस्कृति बिल्कुल नहीं है, धार्मिक सभ्यता नहीं है, ऐसा व्यक्ति नराधम कहलाता है। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं और वो सोचता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करता और ऐसे धर्म आदि के लिए मेरे जीवन में कोई विश्वास नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है। परंतु प्रभुपाद जी और कृष्ण स्वयं यहाँ कहते हैं कि ये वास्तव में मनुष्य समाज में सबसे नीच माने जाते हैं। भले दिखने में कितने उनके जीवन में चमक धमक क्यों न हो, बड़े गाड़ी में आ रहे हो, जा रहे हो, बड़े घर में रह रहे हो, बहुत बड़ा पैसा उनके पास हो, परंतु धार्मिकता उनके अंदर नहीं है, वो धर्म पराय नहीं है, तो वह नराधम है। फिर आगे प्रभुपाद यहाँ कृष्ण भगवान बताते हैं मायया पहरत ज्ञाना। ऐसे कई लोग हैं जिनको समाज में पंडित माना जाता है, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं समाज में, बड़े दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हुए होते हैं और जगह जगह जाके भाषण देते हैं, उनके लेख पुस्तक आदि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और तरह तरह के दर्शन अपने मनगढ़ंत ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई शास्त्रों का आधार नहीं है, तो ऐसे लोगों को माया या पहरित ज्ञाना कहते हैं, अर्थात जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और ये लोग नहीं जानते माया कितनी चतुर है भगवान की, कि उस व्यक्ति की बुद्धि को हरण करके उस
उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। जैसे कोई जेब कतार होता है, पॉकेट मार होता है, कहीं इस प्रकार से कभी चतुर होता है वो जेब काट देता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि मेरे जेब से कुछ गया है। तो माया इतनी चतुर है कि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि ज्ञान आदि हरण कर लेती है, और ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे पास बहुत बड़े विश्वविद्यालय की डिग्री है, एमए पीएचडी है, परंतु भगवान कहते हैं इनका ज्ञान हर लिया है माया द्वारा। और अंत में है आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने आसुरी वृत्ति को स्वीकार किया है। असुरी वृत्ति क्या होती है? असुर वृत्ति वो है जिसमें व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, जो सोचता है कि भगवान के लिए यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान है ही नहीं, केवल भोग ही एकमात्र सिद्धांत है सारे सृष्टि में, और भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को आसुरम भावम आश्रिता कहते हैं। तो श्री कृष्ण यह कहते हैं कि ये चार प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे शरण को नहीं स्वीकार करते हैं। अभी जब आप अन्यों को प्रचार करेंगे कि कृष्ण भक्ति में आओ आओ, अब देखिए वो किस श्रेणी में बैठते हैं यदि वो नहीं आ रहे हो तो। परंतु याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबके लिए है, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और जब भक्तों की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है उसका भाग्य खुल जाएगा। इसलिए आप, आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, उनको आप दो शब्द बताते रहिए, कृष्ण प्रसाद देते रहिए, भक्तों से मिलाते रहिए, जिससे कि धीरे 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 उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके हम कम से कम इस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण की भक्ति करें, भले वो कोई भौतिक इच्छा रखें अपने मन में कि हम कृष्ण के पास जाएंगे कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको श्री कृष्ण के चरणों में आने दीजिए। और फिर जैसे जैसे वो आएंगे उनको पता चलेगा कि सच्ची भक्ति क्या है। पहले जब आएंगे तो मिश्रित भक्ति करेंगे। इसके बाद वाले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो कहते हैं चार प्रकार के लोग हैं जो सुकृतन हैं, जो मेरे पास आते हैं। एक तो है वो जो पीड़ित है, पीड़ा को दूर करने के लिए मेरे पास आता है। दूसरा है जो कोई भौतिक वस्तु चाहता है, धन आदि चाहता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहता है, वो भी मेरे पास आता है अर्थार्थी। तीसरा है जो जिज्ञासु है, वो आत्मज्ञान आदि के बारे में कुछ जानना चाहता है। और चौथा है जो ज्ञानी है, जो वास्तव में ज्ञान के पथ में स्थित है। तो ऐसे कई लोग भगवान के पास आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ये सुकृतन है। कृतन मतलब जो व्यक्ति बहुत विशेष कार्य करते हैं, और उनमें से कृतिन में जो कृतिन होते हैं, अर्थात जो बहुत विशेष कार्य संपन्न करने में योग्य होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, एक है सुकृतिन और दूसरे है दुष्कृतिन। तो सुकृतिन वो है जो विशेष कार्य करते हैं परंतु जो पुण्यवान है, इसलिए उनके जो विशेष कार्य हैं वो सारे मनुष्य समाज के लाभ के लिए होंगे। परंतु ऐसे लोग होते हैं जो दुष्कृतिन है, जो थोड़े बहुत दुष्ट है, और जो विशेष कार्य वो संपन्न करते हैं वो मनुष्य समाज के लाभ के लिए शायद नहीं होंगे, मनुष्य समाज के लिए हानिकारक होंगे, इनको दुष्कृतिन कहते हैं। तो दुष्कृतिन नहीं बनना है, हमें सुकृतिन बनना है, और सुकृतिन होके और भी आगे चलना है। हम देखते हैं जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े विशेष कार्य होते हैं, जैसे हवाई जहाज बनाना, कोई कंप्यूटर बनाना, बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करना, ये सब विशेष कार्य है, कोई साधारण चीज नहीं है, इसके लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत योग्य होना पड़ता है। परंतु देखिए, क्योंकि कृष्ण भक्त नहीं है ये लोग, इसलिए अपने बुद्धि, अपनी योग्यता, अपने बल आदि का प्रयोग ऐसे चीजों के निर्माण के लिए करते हैं जो मनुष्य समाज के हानि के लिए है। जैसे बड़े बड़े अस्त्र, एटम बम आदि निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, केवल मनुष्य समाज में भय और तनाव उत्पन्न होता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, यदि वो कुछ आविष्कार निर्माण करते भी हैं, तो केवल लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। और सबसे बड़ा कल्याण ये है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाएं गुरु हुई तारो ए देश। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है हम सब के लिए जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, कि आप जिनको मिलेंगे उनको आप कृष्ण का उपदेश दीजिए, इस प्रकार से उनको इस भव सागर से पार करने में आप मदद कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश हम सबके लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?